Krishna, Krishna, Hare Hare.
Hare Rama, Hare Rama.
Hare Rama, Hare Rama.
Rama, Rama, Hare Hare.
Rama, Rama, Hare Hare.
Hare Krishna. आप सबका स्वागत है स्कान बलराम देश सायंकाल के भगवद गीता के सत्संग में. यू आर वेलकम. टुडे इज द डिवाइन डिसअपीयरेंस डे ऑफ डिवाइन गोस्वामी नाम से फिर गोस्वामी महाराज. कल हम भगवद गीता के एक वर्ष के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे. फिफ्थ चैप्टर का 22nd वर्ष. ये असान शपर से जाप होगा दुख योन्य एवते आज अंत अवंत कौनते न तेषु रमते बुद्धा. और हम डिस्कस कर रहे थे बुद्धा का मतलब इंटेलिजेंट वाइज. तो वाइज जो मैन है इंटेलिजेंट मैन जो है बुद्धिमान है वो इंद्रियों के विषयों के भोग में रमण नहीं करता. ये जानता है कि ये टेम्पररी है. इसका बिगिनिंग है और एंड है. तो इस श्लोक के ऊपर कल चर्चा चल रही थी. तो इंद्रियों के भोग को न करना अथवा वॉलंटरी रोकना उसको तपस्या कहते हैं. तपस्या का अर्थ है वॉलंटरी स्वेच्छा से भोग को रोग समझकर त्याग देना. भोग को रोग समझकर, रोग का मतलब डिजीज, त्याग देना. तो फिर एंजॉयमेंट कहाँ है? अगर सेंस एंजॉयमेंट नहीं मिलेगी, इंद्रिय तृप्ति नहीं मिलेगी, तो फिर कौन सी एंजॉयमेंट? तब भगवत गीता अल्टरनेट देते हैं ब्रह्म सौख्यम अनंतम. तो फिर आप आत्मा के अनंत सुख का अनुभव करना सीखो. जो अनंत है उसका बिगिनिंग एंड नहीं है, वो बढ़ता रहता, वो आनंद कहलाता है. आनंदाम बुद्धि वर्धनम, वो बढ़ता रहता. तो इस श्लोक का जो सार निकलता है, जो इसेंस निकलता है वो है तपस्या. तपस्या और भगवत गीता के 18वें अध्याय में तो भगवान श्री कृष्ण अपना ओपिनियन देते हैं. यज्ञ तप दान कर्म न त्यजेत. कभी भी यज्ञ का कर्म, दान का कर्म और तप का कर्म नहीं छोड़ना चाहिए. पावनानी मनुष्यमी नाम. बहुत बड़े कोई मननशील मुनि हो, ऋषि हो, उनको भी ये पवित्र करते हैं. तो उनमें एक तप है जो कभी नहीं छोड़ना चाहिए. अब भक्तों के लिए सबसे बड़ा तप क्या है? चैंचिंग. सबसे बड़ा मुश्किल तप भक्तों के लिए क्या है? इंद्रिय भोग को रोकना. बैठ के सुनना भी बहुत बड़ा तप है. स्टोर फ्रंट के बाहर प्रभुपाद जी ने 66 में स्कान के कुछ रूल लिखे थे. उसमें एक रूल था सदा कृष्ण प्रसाद खाना. वो ऐसा रूल है अभी तक पूरा नहीं हो रहा है. सबसे बड़ी तपस्या ये है कि हमेशा प्रसाद ही खाना, ये सबसे बड़ी तपस्या है. भोजन तो खा लेते हैं, हमेशा प्रसाद खाना ये सबसे बड़ी तपस्या है. बहुत मुश्किल। मैं तो सुन रहा था, एक प्रसाद तो बाहर रेस्टोरेंट में बनता है, एक प्रसाद माँ बनाती है, एक प्रसाद मंदिर में बनता है। तीन भोजनों का इफेक्ट अलग है। रेस्टोरेंट में भोजन बनाते क्यों है, क्यों बना, रेस्टोरेंट क्यों खोलते लोग? तो वहाँ जो खाएगा उसके मन में होगा केवल पैसा कमाना। बहुत वही चीज आएगी ना, जो चीज बनाने वाले के दिमाग में है वो खाने वाले के पास आएगी। तो उसने खोला ही इसलिए पैसा कमाने वाले के, और वहाँ खाने वाले सिर्फ पैसा कमाने का सोचते। ये सच है कि नहीं? अब ज्यादा लोग पैसा कमाने का सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं? इसका मतलब सब लोग बाहर खाते हैं। हाँ? और माँ प्रेम से खिलाती है, बच्चा अगर कहे कि माँ एक रोटी और दो, माँ खुश हो जाएगी, मेरे बच्चे को अच्छा भूख लगता है, शी विल बी हैप्पी। और काम करने वाले को एक रोटी बोलो ज्यादा, बोला रोज दो खाता, आज क्यों तीन तीन क्यों मांग रहा है, कौन दोबारा आटा, कौन दोबारा आटा बनाएगा? तो उसके देने में उसका मन बदल जाएगा। और मंदिर में भगवान का प्रसाद खाने वाला कीर्तन में नाचेगा, आनंद से रहेगा, और दूसरे दिन का इंतजार करेगा कि कब प्रसाद कब दोबारा मिलेगा। तो खान असल में प्रसाद के ऊपर जीना बड़ी तपस्या है जीवन। मैं देखता हूँ वो जो पांच छह रूल प्रभुपाद जी लिखे थे उनको अभी तक पालना करना मुश्किल, 50 साल के बाद भी रियली स्ट्रगलिंग है। तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज एक समय ऐसी तपस्या करने लग गए थे, चतुर्माश्य में बगैर हाथ के ऐसे ही खा लेना सिर्फ एक बार खिचड़ी और कुछ भी नहीं, और 64 माला क्या ज्यादा जप करना। तो भुखोर किशोरदास बाबा जी महाराज कहने लगे, हमारे प्रभु में रूप सनातन का वैराग दिखने लगा है। गुरु अगर कहे कि मेरा शिष्य तपस्वी है, ये बहुत बड़ी बात है। और वैरागी गुरु गौर किशोरदास बाबा जी महाराज वैरागी है, वैराग्य मूर्ति है। वो कहते हैं कि आज हमारे प्रभु में रूप सनातन का तप दिख रहा है, रूप सनातन का त्याग दिख रहा है। और रूप सनातन का त्याग क्या था, चेतन चरितमृत में लिखा है, जब कोई भी व्यक्ति वृंदावन जाके वापस आता था तो सब पूछते थे रूप सनातन क्या कर रहे हैं, क्या खाते हैं, कहाँ रहते हैं, और उत्तर मिलता था पेड़ के नीचे रहते हैं, और एक के नीचे 3 दिन नहीं रहते हैं, पेड़ भी बदलते हैं, खाने को सूखी रोटी जमुना जल में भिगा के खा लेते हैं, नहीं तो कुछ चने चबा लेते हैं। तो ये उनका वैराग और त्याग सुन के महाप्रभु को बड़ी प्रशंसा होती थी, बहुत खुश होते थे। और हम उसके ऊपर जब अध्ययन ध्यान देते हैं तो सूखी रोटी और चने खा के भक्ति रसामृत लिख दिया, और यहाँ पनीर खा के पढ़ना मुश्किल है। तो बहुत इतनी तपस्या से इतना सुंदर शास्त्र दे दिया हमको, और हम उसको समझना हमारे लिए मुश्किल हो गया। और तो ये तपस्या की जो, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बहुत बड़ी तपस्या की, और प्रसाद सबसे बड़ी तपस्या है। वो तो प्रभुपाद जी हमेशा ये उदाहरण देते थे, वो रिपीट करने का मतलब है कभी उसका 1% भी हमारे जीवन में संकल्प आ जाए तो बहुत बड़ा आध्यात्मिक लाभ हो जाए। 5 साल के छोटे बच्चे घर में आम लाए और आम बगैर भगवान को भोग लगा के खा दिया, और भक्ति विनोद ठाकुर ने जरा डांट के कहा कि अपराधी को भगवान को भोग लगे के मिलने से पहले क्यों खाया, छोटा बच्चा था, लेकिन उस एक बात को पूरी जिंदगी आम नहीं खाया। कोई आम देता था तो कहता मैं अपराधी हूँ, मैं नहीं खा सकता। कितनी बड़ी बचपन 5 साल से फ्रूट का किंग मैंगो उसको छोड़ दिया एक बार, तो ये इसको कहते हैं तपस्या, ये तपस्या। भक्तिदान सरस्वती गोस्वामी महाराज उस तपस्या के समय में विचार कर रहे हैं कि मेरे दोनों गुरुदेव ने आदेश दिया है कि प्रचार करो, दोनों गुरुदेव में दीक्षा गुरु गौर किशोर दास और शिक्षा गुरु भक्ति विनोद ठाकुर, वो दोनों को अपने गुरुदेव मानते थे, दोनों ने आदेश दिया है, बोथ हैव इंस्ट्रक्टेड मी टू प्रीच। कहते आई डोंट हैव मनी, मेरे पास धन नहीं है, मेरे पास जन नहीं, आई डोंट हैव फॉलोअर्स, तो मैं कैसे प्रचार कर सकता हूँ। सन्यासी कुछ है नहीं, तपस्वी हूँ, तो रात को सोए थे तो उनको दिखता है पांच तत्व प्रकट होते हैं और फिर छह गोस्वामी प्रकट होते हैं और फिर भक्ति विनोद ठाकुर और गौर किशोर दास महाराज पुण्य त्रिया में प्रवेश हो चुके थे, प्रकट होते हैं और वो उनको देखते हैं और वो कह रहे हैं सब आप प्रचार के लिए बाहर निकलो, अनलिमिटेड रिसोर्सेज धन और बहुत से सेवक तैयार हैं, यू सिंपली स्टार्ट। ये विजन उनको तपस्या करते हैं तो भगवान का प्रसाद मिलता है, तो ये तपस्या का रिजल्ट है कि उनने साक्षात दोनों गुरुदेवों को भी देखा और परंपरा और पंचतत्व का डायरेक्ट दर्शन कर किया और आर्डर ये और बाहर निकले प्रचार करने के लिए। तो कहां से लोग आने लगे पता नहीं, लोग इकट्ठे होने शुरू हो गए और बहुत थोड़े समय के अंदर भारत में बर्मा में पड़ोसी जहां धरती से जाया जाता है उन सारे देशों में 64 से ज्यादा सेंटर स्थापित, 64 सेंटर स्टैब्लिश हो गए, कितने सारे फॉलोअर्स मिल गए, इतने बड़े मंदिर उस मंदिर समय में ही ब्रिटिश टाइम में बनाना इतना आसान नहीं था, लेकिन ये सब बन गए, पुराने मेंटेन करना भी मुश्किल थे उस जमाने में। तो ये सब तपस्या, ये वैसे भारतवर्ष तपस्या की भूमि है। ये तपस्या के ऊपर मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि कल के श्लोक में पर्पट के अंदर श्री प्रभुपाद जी जो श्लोक उन्होंने कोट किया है वो किया तपो दिव्यम पुत्र का, ऋषभ देव की शिक्षा का, तपो दिव्यम। तपस्या तो आप भी करते हैं, सुबह सवेरे 6 बजे उठते हैं, 7 बजे भागते हुए काम पे जाते हैं और शाम तक काम करते हैं, तपस्या कोई आसान काम नहीं है, कोई घर छोड़ना परिवार छोड़ना इतना जाके ये तो तपस्या ही है। लेकिन दिव्य तपस्या दूसरी चीज होती है, तपस्या अरुणाचल से ज्यादा तो बम्बई के लोकल ट्रेन में दोनों हाथों में टंगे हुए लोग करते हैं, इतनी जो है ना कजने में नहीं गिरी, रोज दो हाथ लग में लटके हुए 3 घंटे आते जाते रहते हैं, तपस्या तो वो भी बहुत कर रहे हैं, लेकिन वो दिव्य तपस्या नहीं। दिव्य तपस्या का मतलब डिवाइन आस्तुति का मतलब दिव्यता को प्राप्त करने के लिए। दिव्यता क्या है? जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती की तपस्या के उनको दिव्य दर्शन हुए, उनको दिव्य आदेश मिला, प्रभुपाद जी जब राधा दामोदर मंदिर में रहते थे तो पास में बाबा जी रहते थे, वो रात को रोज 2-3 बजे कुछ आवाज सुनते थे, तो एक दिन चांदनी रात को ऊपर उठ के छत के ऊपर देखते हैं तो रूप सनातन रूप गोस्वामी की समाधि के सामने झाड़ू लेके प्रभुपाद जी सफाई कर रहे हैं और बड़े कातुर्भाव से, कातुर्भाव का मतलब क्राइंग कि मेरे गुरुदेव ने आदेश दिया है कि मैं विश्व भर में प्रचार करूं, 5-4 देश में मैं कैसे करूं, मेरे पास तो कोई शक्ति नहीं है, कोई सहायता नहीं है, नो हेल्प नहीं है, कैसे मैं करूं। एंड एवरी डे रोज रात को 2 बजे से वहां रूप गोस्वामी सफाई करना एंड जस्ट ही वाज प्रेइंग एंड प्रेइंग क्राइंग एंड प्रेइंग। और मैं ऊपर से देखा कि रोज का उनका ये था। एंड देन रूप गोस्वामी उनको प्रत्येक बोला आप काम शुरू कीजिए और सब चीजें पहले से तैयार पड़ी। तो ये तपस्या जिसके जीवन में है वो आध्यात्मिकता में उन्नति करता है। वॉलंटियरली जो तपस्या को स्वीकार करता है, तो जप करना भी तपस्या है, कथा सुनना भी तपस्या है, ये चार नेम तपस्या है बेसिकली। ये वैराग्य है, ये जो मन को वश में करने का श्री कृष्ण का संदेश है सीधा भगवद गीता में, अभ्यासे न तो कौनते वैराग्य न तो गृहते। अभ्यास और वैराग्य से मन को वश में किया जा सकता है, जो बहुत चंचलम ही मन कृष्ण परमासी बलवत दृढ़म। चंचल है, फिल्टरिंग है, चंचल है। परमाथी, परमाथी का मतलब वेरी ट्रबलेंट, जिस लड़के मिक्सी की तरह घूमता है, पता नहीं कहाँ है, पता नहीं लगता है, पंखा घूमता है कहीं दिखता नहीं है, पर दिखता है नहीं दिखता है। एक आदमी मई के जन्म मई की हीट में वृंदावन में पंखे चलते का बटन बंद कर दिया। तो गर्मी हो रही है क्या कर रहा है, बोला देखो नाम किसका लिखा है डोनेशन के लिए, चलते में थोड़ी दिखता है, हवा तो खा रहे हो, कितने डोनेट किया पढ़ो तो सही पहले। तो ये पंखा चलता हुआ तो कुछ नहीं दिखता है, गोल गोल चलता है, तो मन उससे भी ज्यादा भागता है। चंचलामी मन कृष्ण परमाथी बलवद, बहुत बलवान है, बलवान मीन्स वेरी पावरफुल, और दृढ़म का मतलब वेरी एब्सटिनेंट है, बिल्कुल सुनता नहीं, जो करना है करना है। श्री कृष्ण दो क्या बताया, अभ्यास, अभ्यास व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अभ्यास, प्रैक्टिस, व्हाट वी शुड प्रैक्टिस, हरे कृष्ण। अभ्यास मीन्स चेंटिंग रेगुलरली, वो हरे कृष्ण महामंत्र इज अभ्यास। वैराग्य फॉलोइंग फॉर रेगुलरली प्रिंसिपल इज वैराग्य। This is a simple explanation of the two words. Abhyas means repeating, chanting of the holy name, and vairag means following four regular principles. Prabhupada ne aise hi iska arth likha hai teesre skand Bhagavat ke purport mein. Prabhupada has given this explanation for these two words in third canto of Bhagavat. Abhyas, directly regular chanting. Vairagya, this is tapasya. भारत वर्ष तपोभूमि है। कल हमने आपको कहा था ऋषभ देव किसको संबोधित करके बोल रहे हैं, ऋषभ देव को, जो उनका बड़ा बेटा है और उसके 100 पुत्र हैं। आउट ऑफ दी 100 9 तो बने साधु संत सन्यासी नव योगेंद्र, और बने कर्मकांडी ब्राह्मण, और 10 बने क्षत्रिय राजा। तो एक एग्जाम्पल क्या मिल रहा है, एक ही बाप के कुछ ब्राह्मण बने, कुछ क्षत्रिय बने, और कुछ साधु बने त्यागी। तो वर्ण तो जन्म से नहीं हुआ ना, और ये भगवान के पुत्रों की बात हो रही है, ऋषभ देव के पुत्रों की बात हो रही है। महाराज भरत तो बहुत बड़े राजा हुए, इवन ही बिकम ए किंग, और नव योगेंद्र हरि कवि अंतरिक्ष पिपलायन, ये नव योगेंद्र तो ये तो योगेंद्र का ब्रह्मचारी जैसे लिबरेटेड सोल है, और बाकी 81 देव और ब्रह्म कर्मकांडी ब्रह्म। सो इन सबको शिक्षा देते हुए भारत महाराज को लक्षित करके साधु समाज के अंदर ब्रह्मावर्त में जो सेंटर है पूरी पृथ्वी का, तपो देवियम पुत्र का बेटा दिव्य तपस्या कर। भारत वर्ष तपस्या की भूमि है। भारत वर्ष का जब वर्णन भागवत में आता है तो भारत वर्ष में पूजा होती है भगवान नर नारायण की, और भारत वर्ष का आराध्य स्थान है बद्री का आश्रम। और भारत वर्ष में भगवान नारायण की पूजा करते हैं नारद जी। हर एक वर्ष का एक प्रिजाइडिंग डीजी होती है और एक उसका पुजारी होता है। तो नौ वर्षों के इस पे हर एक वर्ष का एवरी जो वर्ष है जम्बू जीव का उसका भगवान की वहाँ भगवान विष्णु की किसी न किसी रूप की पूजा होती है और उसका एक भक्त होता है। तो भारत वर्ष का आराध्य देव जो भगवान नारायण है वो तपस्या की मूर्ति है, क्योंकि ये भारत वर्ष है ही तपस्या के लिए। कल हमने कहा था सारी धरती जो समुद्र के खारे पानी से घिरी हुई है उसको भारत वर्ष कहते हैं और भारत खंड उसका एक छोटा सा हिस्सा है जिसको हम इंडिया भी कहते हैं। जो पहले तो कृष्णकालीन भारत बहुत विस्तृत था। सो नर नारायण तपस्या की मूर्ति है, वो धर्म और माँ मूर्ति का बेटा, उनकी माता का नाम मूर्ति है, धर्म उनके पिता का नाम है और तपस्या के वो तपस्वी इतने हैं कि लक्ष्मी तो भगवान की नित्य कंसल्ट है, प्रियासी है। उसने कहा पतिदेव तपस्या करने मैं कैसे सेवा करूं पति की, पतिव्रता स्त्री है। तो वो बेर का पेड़ बन के छाया देने लगी और फल देने लगी। तो भगवान नारायण ने उसको कहा कि अब जैसे मुझे लक्ष्मी नारायण कहेंगे तो तुम बद्री बनी हो तो मेरे अभी मेरे को बद्री नारायण कहेंगे। तो वो आश्रम बद्री नारायण, वो बद्री का आश्रम कहते हैं। तो बद्री मतलब लक्ष्मी, असल में बेर का पेड़, लेकिन लक्ष्मी उस रूप में वहां प्रकट हुई वो तपस्वी पति को की सेवा करने के लिए। तो तपस्या की मूर्ति नर नारायण है। उसकी तपस्या भंग करने के लिए तो इंद्र ने अप्सराएं भेजी थी, कामदेव को भेजा था और नर नारायण मुस्कुराते हुए ऐसे ही अपने एग्जाम को हाथ मारा तो उससे एक उर्वशी निकली और कहो कि ये इंद्र को गिफ्ट देना हमारी तरफ से, तुमने इसे भेजी है ना, इससे ये बहुत अच्छी स्पेशल है, मैं आपको देता हूँ इंद्र को गिफ्ट देना। तो वो बिल्कुल विचलित नहीं हुए। तो ये आगे चल के आपको थोड़ा, ये उर्वशी स्वर्ग की अप्सरा नहीं, ये भगवान नारायण के अंदर से उत्पन्न हुई है। इसके वंश में आगे जाके यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण का प्रकट्य होगा। उर्वशी और पुरोरवा का विवाह होगा, फिर आगे यदु होगा, फिर इस वंश में भगवान श्री कृष्ण का प्रकट होगा। तो ये दिव्य जो जो तो भगवान के अंग से उत्पन्न हुई है उर्वशी, तो ये तपोभूमि है। तो कल का जो श्लोक है, तपस्या करनी चाहिए, दिव्य तपस्या करनी चाहिए। तपस्या तो सभी कर रहे हैं, बच्चे भी सुबह सुबह स्कूल जाते हैं वो भी तपस्या है, आप नौकरी पे जाते हैं वो भी तपस्या है, स्त्रियां घर में बैठ के गर्मी में चूल्हे के ऊपर रोटी बनाती है वो भी तपस्या है। ये तपस्याएं तो सभी मुश्किल है, हर एक आदमी कर ही रहा है, लेकिन दिव्य तपस्या करनी चाहिए। दिव्य तपस्या का मतलब ये है कि वो तपस्या जिससे दिव्यता प्राप्त हो, मीन्स डिवाइन ग्रेस मिले। तो ऐसी तपस्या का साधन ये श्लोक, ऐसी तपस्या का सूचक है, इसलिए प्रभुपाद ने श्लोक के तात्पर्य में तपो दिव्यम लिखा है। और अब सारे आचार्यों की लिस्ट पूरी देखेंगे तो सारे तपस्वी, गोस्वामी कैसे तपस्वी, अभी हमने सुना उनका वर्णन, बाकी सिद्धांत सरस्वती महाराज की तपस्या, प्रभुपाद जी की तपस्या, मैंने आपको बताया प्रभुपाद जी 65 साल की आयु में साइकिल चला के अपना बैग टू हार्ट है गाढ़े स्वयं वितरण करने जाते थे। 65 की एज में भी उस साइकिल को चलाते हुए अपना बैग टू बार एक मैगजीन स्वयं डिस्ट्रीब्यूट करने जाते थे। तो कितनी बड़ी तपस्या है। ये तपस्या के बगैर कोई भगवान की भक्ति अथवा भगवान का प्रेम अथवा भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होती है। तो तपस्या जीवन में होनी चाहिए। जो तपस्या का जीवन है वो ही असल में आनंद देने वाला है, सुख देने वाला है। तो जीवन में थोड़ा सा तपस्या को जोड़ना चाहिए। जैसे हमने कल कहा था, हमारी सबसे अच्छी तपस्या है भगवान की कथा सुनना, घंटा एक बैठ के कथा सुनना, ये बड़ी तपस्या है अपने आप। तपस्या है कि नहीं? मई जून में राजस्थान की माता ने चूल्हे के ऊपर लकड़ी पे रोटी बना के पति को परोस के दी, एक हाथ से खिलाया, एक हाथ से पंखा चलाया, फिर भी पति को खाते हुए पसीना आया। तो पूछा कि बनाया मैंने गर्मी में, खिला मैं रही हूँ, पंखा मैं जला रही हूँ, तुम्हें पसीना क्यों आ रहा है? तो तुम पति दे, वह चबा दे रहा बाप रहा है। तो चबा कौन रहा है? ढोल लगा के चबा कौन रहा है? पसीना तो आ, चबा कौन रहा है? तो असल में व्यास देव ने वेद लिख दिया, प्रभुपाद ने उसको अंग्रेजी भाषा में इंटरनेशनल किताबों के रूप में छाप दिया, और फिर भक्त पूरे विश्व में भ्रमण करके उसको वितरण भी करते हैं और सुनाते भी हैं, लेकिन एक घंटा बैठ के सुनने में भी पसीना आता है। उसमें भी पसीना आएगा, इतना इजी ये है। ये तपस्या है, जप करना अपने आप में तपस्या है, वो यज्ञ है, अपने में तपस्या नहीं है, ये यज्ञ है। यज्ञ तप दान कर्म न त्यजेत। तो हमारे लिए यज्ञ क्या है? रोज का जप करना हमारा रोज यज्ञ है, ये हमको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जप मैं यज्ञ हूँ मैं, तो ये सबसे बड़ा यज्ञ है। और तपस्या हमारी क्या है? रोज बैठ के कथा सुनने का, रोज नेम बनाना। चाहे यहाँ नहीं आ सकते हैं तो प्रभुपाद जी का, किसी और वैष्णव का, गुरुदेव का रोज एक घंटा लेक्चर सुनने का नेम बना, एक घंटा आधा पुस्तक पढ़ लो। तो एक तपस्या, ये हमारी तपस्या है श्रवण, भक्ति का पहला अंग। और हमारा दान क्या है? जो हमने सीखा है दूसरों को, विद्या दान सबसे उत्तम दान हम कर सकते हैं। प्रभुपाद जी ने नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में जहाँ ददाति प्रति गणति लिखा है, उस ददाति में लिखा है भगवान के नाम का प्रचार सबसे बड़ा दान है जो हम करते हैं। प्रभुपाद जी ने यहाँ लिखा है स्कान इज एस्टैब्लिश फॉर दीज सिक्स एक्सचेंजेस। स्कान की स्थापना ही इन छह कार्यों के लिए की गई है। देने के लिए हरि नाम है, लोगों को हरि नाम देना है तो उसके लिए प्रचार करेंगे ना, तो प्रचार करना हमारा सबसे बड़ा दान है। जो सबसे ये तीन काम हमको करने हैं, जो कभी नहीं छोड़ने चाहिए, जप यज्ञ करना चाहिए, संकीर्तन यज्ञ करना चाहिए। तपस्या में स्वाध्याय करना चाहिए, तपस्या में स्वाध्याय। स्वाध्याय किसकी तपस्या में आता है? वाणी की तपस्या में आता है। भगवद गीता में तीन तपस्या है, शरीर की तपस्या, मन की तपस्या, वाणी की तपस्या। बाय द बॉडी माइंड एंड वर्ड्स। तो वर्ड्स की जो तपस्या है उसमें है स्वाध्याय। श्लोक निकल 77 अध्याय में होगा ना तपस्या। देव द्वेज गुरु प्रज्ञा पूजनम सोचम, दिस इज दी शरीरम तप उच्यते। भगवान को प्रणाम करना, गुरुजन को प्रणाम करना, ब्राह्मण को आदर करना, बड़े माता पिता बुजुर्गों को बड़ा सम्मान करना, पवित्रता से जीवन को बिताना, ब्रह्मचार्य का पालन करना, ये शरीर की तपस्या है। तो ये प्रणाम करना भी तपस्या है, ये शरीर की तपस्या है, नहीं चाहते हुए भी करना चाहिए। बड़ों को, गुरुजनों को, भगवान को प्रणाम करना ये तपस्या है। बड़ों का सम्मान करना ये भी बड़ी तपस्या है, और ये तपस्या भी सबने छोड़ दी, प्रणाम करना ही लोगों से भूल गया। तो कैसे भी इस कान में प्रणाम करने की एक प्रणाली चल पड़ी है, तो भक्त मिलते हैं एक दूसरे को प्रणाम करते हैं, नहीं तो घरों में तो प्रणाम चला ही गया। बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करने वाला जमाना ऐसे हो गया था। तो तपस्या क्या हो गई? प्रणाम, शरीर की। और वाणी की तपस्या क्या है? मीठा बोलना, सच बोलना, किसी को नहीं दुखाना, अपने बोलने से किसी को दुखाना नहीं, दुखाना मतलब not to hurt somebody by speaking some rough thing. वाणी की सबके लिए श्लोक क्या है? निकाल श्लोक कौन है भगवद गीता? स्वाध्याय वाणी तप उच्यते निकालो भाई कहाँ है? हरे कृष्ण सत्र सेवेंटीन सेवेंटीन अनुवेग कर्म वाक्यम अनुद्वेग कर्म वाक्यम. वाक्य जो मुख से निकले वो दूसरे को उद्वेग न करे. उद्वेग का मतलब उल्टी होता है. नॉर्मली खाना नीचे जाना चाहिए, अगर पेट से बाहर निकले उसको उद्वेग कहते हैं. तो उद्वेग का मतलब ऐसा किसी को मत कहो जो उसको उसको इट्स बिकम लाइक ए वोमिटिंग, इट मीन्स ही बिकम डिस्टर्ब बाय दैट. तो अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम सच बोलो, प्रिय हितम वो सच भी प्रिय होना चाहिए और किसी के हित के लिए होना चाहिए. अगर प्रिय नहीं है तो सत्य नहीं बोलना चाहिए. सत्यम प्रियम प्रिय प्रियम. स्वाध्यायाभ्यासनम चैव. स्वाध्याय मतलब शास्त्र का स्वाध्याय, वैदिक स्टडी, अध्यसनम प्रैक्टिस. तो स्वाध्याय ये हमारी वाणी का तप है. बोलने का तप क्या है? शास्त्र को पढ़ना. स्वाध्याय का अर्थ होता है स्वयं का अध्ययन करना, अपना अध्ययन करना और शास्त्र का अध्ययन करना जीवन में. तो ये किसका तप है? वाण्मयम तप उच्यते, ये वाणी का तप है. तो तपस्या शरीर की में प्रणाम करना चाहिए और शास्त्र पढ़ना और सुनना जो भी ये स्वाध्याय में आता है ये वाणी की तपस्या है. कम से कम एक दो घंटा रोज श्रोताओं जी कहते हैं मेरे पुस्तक पढ़ना चाहिए. इसके बाद किसकी तपस्या है? मन की. और मन की तपस्या सबसे मुश्किल है. और मन की तपस्या में एक शब्द है मौनम. जैसे सामान्य अदरवाइज वी अंडरस्टैंड मौनम मीन्स नॉट स्पीकिंग, लेकिन वाणी की तप मौन नहीं है. वाणी का तप नहीं है मौन. मौनम इज नॉट एस्टरिटी ऑफ टंग, इट्स द एस्टरिटी ऑफ माइंड. जबान बंद भी करो तो दिमाग हिलता रहेगा. सो मौनम इज द एस्टरिटी ऑफ माइंड. सो मौनम इज मन प्रसाद समत्तव्यम मौनम आत्म विनिग्रह भाव संसुदीति एतत् तपो मानसम उच्यते. सेटिस्फेक्शन प्रसाद मन प्रसाद सेटिस्फेक्शन. आप सेटिस्फाई हैं जीवन में? कोई भी नहीं है तो मन प्रसाद नहीं. मन प्रसाद सेटिस्फेक्शन. कैसी भी स्थिति है जीवन में सेटिस्फाई रहना. मन प्रसाद सौम्यत्व. सौम्यत्व वैसे सोम चंद्रमा को कहते हैं. मून इज कॉल्ड सोम. सौम्य मीन्स लाइक मून, वेरी कूलिंग, बहुत स्वीट. जिसका नेचर हो वो सौम्य कहलाता है. सौम्यम. और सौम्यम का ट्रांसलेशन पर्पज है सिंप्लिसिटी. सौम्य Swamyam, without Swamyam, satisfaction of the mind, Swamyatvam, being without duplicity towards others. Maunam, gravity, not speaking nonsense. Mind should be really grave. Think, grave kaise hoga? Bhagavan ke baare mein sochenge, then we will be really peaceful. So how really will be peaceful? When mind ki austerity kya hai, always think of Krishna, then we will be satisfied. Then hum santusht bhi ho jayenge, satisfaction bhi ho jayegi, aur saath mein dusron se droh nahi karenge, aur compassion aa jayegi. जो अभी ना अभी हम जो दूसरों का बुरा सोचते हैं, फिर दूसरों का भला सोचने लग जाएंगे. तो ये मन की तपस्या है. और भाव संशुद्धि, प्यूरिफिकेशन ऑफ वन्स नेचर, ये भी कभी तपस्याओं को ऐसे पढ़ना चाहिए. शरीर की तपस्या, मन की तपस्या, वाणी की तपस्या. तो ये तपस्या हमारे जीवन में होनी चाहिए, तब हम बुद्धा या बुद्धिमान या वाइज कहलाएंगे. तब हम इंद्रिय तृप्ति में इंटरेस्ट नहीं लेंगे और अनंत आत्म सुख के लिए तपस्या करेंगे. अनंत सुख उसके लिए तपस्या करेंगे. भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज, सबसे बड़ी तपस्या तो संन्यास है. और ये तो बाल जो आजीवन ब्रह्मचारी रहे और फिर संन्यास लिया, इससे सबसे बड़ी तपस्या में तो ये तपस्या आती है. और पहला श्लोक क्या है शिक्षा अष्टकम का? वाचो वेगम मनस्त क्रोध वेगम उपस्त जीवा वेगम उपस्त इंद्रिय उपस्त उधर उपस्त वेगम एतान वेगान ही विसहेत धीरा सर्वाभिमान. ये फर्स्ट वर्स उपदेशामृत की है. मालूम है उपदेशामृत? उपदेशामृत ओरिजिनली चेतना महाप्रभु के मुख से उस वक्त निकला जगन्नाथपुरी में, जब वो रूप गोस्वामी उधर गए हुए थे. रूप गोस्वामी वादन जगन्नाथपुरी, चेतना महाप्रभु समुन्द्र को कि ब्लू कलर को कृष्ण समझ के उसमें चले गए. वहां से जब लाए तो ही वजन है ट्रांस एंड देन ही स्पोक समथिंग एंड रूप गोस्वामी एक्चुअली नोटेड ऑल दैट एंड देन ही कंपाइल्ड. फर्स्ट पहले रूप गोस्वामी ने उपदेशामृत लिखा. भक्ति रसामृत सिंधु बाद में लिखा. इट वॉज रिटन फर्स्ट. और फिर उपदेशामृत के ऊपर भक्ति विनोद ठाकुर ने पहली टीका लिखी. ही मेड हिज फर्स्ट कमेंट्री पीयूष वृत्ति टीका. और फिर भक्ति विनोद ठाकुर ने डायरेक्ट ऑर्डर दिया भक्ति सिद्धांत सरस्वती को, यू राइट कमेंट्री ऑन दिस. और उस कमेंट्री में भक्ति सिद्धांत सरस्वती लिखते हैं कि मुझे मेरे गुरुदेव ने कमेंट्री लिखने को लिखा है. और कमेंट्री का नाम, भक्ति सिद्धांत सरस्वती की कमेंट्री का नाम है अनुवृत्ति टीका. अनुवृत्ति मीन्स फॉलोइंग इन दी फुटेज स्टेप्स ऑफ भक्ति विनोद, अनुवृत्ति टीका. और भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहते हैं जब मैं आठवें श्लोक की कमेंट्री पूरी की तो भक्ति विनोद ठाकुर राधा कुंड में भगवत धाम नित्य लीला में प्रवेश किया. सो भक्ति सिद्धांत सरस्वती कमेंट्री लिख रहे थे, आठवां श्लोक ही फिनिश किया था. वो अपनी कमेंट्री में लिखते हैं तो भक्ति विनोद ठाकुर नित्य लीला प्रवेश की और उसके बाद उन्होंने उसको कंप्लीट किया है उस कमेंट्री को. तो उसमें जो फर्स्ट वर्स है एक्चुअली वो प्रिंसिपल उसका है. फर्स्ट वर्स का प्रिंसिपल क्या है? व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट वर्स ऑफ उपदेशामृत? ऑस्टेरिटी, तपस्या. स्पिरिट उसका उद्देश्य असल में है, स्प्रिट प्रिंसिपल उसका उद्देश्य है कि आध्यात्मिकता में गुरु आवश्यक है. दिस वर्स प्रभुपाद इज पैराफ्रेजिंग, दिस वर्स इज क्वालिफाइंग ए पर्सन टू बी गुरु. ही कैन बी गुरु ऑल ओवर द वर्ल्ड. जैसे इस वर्स में ये है तो पहला प्रिंसिपल आध्यात्मिकता का स्पिरिचुअल लाइफ में फर्स्ट प्रिंसिपल है वी नीड ए स्पिरिचुअल मास्टर. हु इज स्पिरिचुअल मास्टर नहीं, व्हाट इज स्पिरिचुअल मास्टर. ये वर्ड्स कहती है गुरु कौन हो सकता है जो ये छह अर्जिस को कंट्रोल करे बाय कृष्ण कॉन्शियस वे. बहुत सुंदर प्रभुपाद इज वेरी वंडरफुल फ्रेज वन हु कंट्रोल्स वाचो वेगम. बोलने का हर एक को बोलने की इच्छा होती है लेकिन बोलने के लिए वो केवल कृष्ण कथा बोले नहीं तो चुप रहे. ये पहले वाचो वेगम क्रोध वेगम, क्रोध को बहुत मुश्किल है रोकना, मन को रोकना, ये ऑल दे आर वेरी डिफिकल्ट सिक्स वेगम्स. इनको रोकना ये बहुत बड़ी तपस्या है और ये असल में स्पिरिचुअली फर्स्ट प्रिंसिपल है. ये असल में ये योग जैसा है, पहले प्रिंसिपल है इसमें ये. और दूसरी वर्ष क्या है यम डोंट डू. जैसे योगा में यम होता है ना, यम शब्द जब सुनो तब तो यमराज को याद करो कि नहीं करोगे तो यमराज के पास जाना पड़ेगा. यम मीन्स डोंट डू. यम को जस्ट टू अंडरस्टैंड यम मीन्स डोंट डू. क्या नहीं करना चाहिए क्या है दूसरी वर्ष क्या है अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह फिर संगत त्याग ततोवृत्ति षड्विधि भक्तिर विनश्यति. ये छह चीजें भक्ति को नाश करती हैं. अत्याहार ज्यादा इकट्ठा करना, ज्यादा खाना. आप तो सब यहाँ ज्यादा इकट्ठा करने ही आए हैं नहीं ज्यादा इकट्ठा करने आए और काय के लिए है हरे कृष्णा. फिर बुद्धि आपने लगाई क्या ज्यादा इकट्ठा करें क्या करेंगे, साउथ वृंदावन में मंदिर बना लेते हैं. तो ये बुद्धिमानी थोड़ी आपने कर ली, नहीं तो ऐसे हार से बच गए. अतिहार तो कर ही रहे थे लेकिन अतिहार को राइट डायरेक्शन में चैनल कर दी. प्रयास कितना प्रयास करते हैं, हम कहते हैं 7 बजे थोड़ा रुको कथा सुनो, नहीं टाइम हो गया रोटी का रास्ते में खाएंगे, चलते चलते खाएंगे, टाइम पास खड़े होने को अतिहार है. ये अतिहार ज्यादा चाहिए तो फिर ज्यादा मैम प्रयास कहाँ से आएगा, अतिहार से प्रयास आ जाएगा. तो ये भक्ति का विनाश करने वाले. तो ये सारा ये प्रभुपाद जी कहते थे ये इज अ लॉ बुक फॉर द डिवोटीज. नेक्स्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज लॉ बुक फॉर द डिवोटीज. इज अ फुल कैप्सूल ऑफ डिवोशन. ये भक्ति का कैप्सूल है, इसको खा लोगे तो भक्ति आ जाए. कैप्सूल है फुल कम्प्लीट. हाँ सेंस कंट्रोल से लेके एकदम राधा कुंड तक जस्ट 11 वर्सेज में पूरी भक्ति का पूरा कैप्सूल है. वेरी इंटरेस्टिंग है इसको, कभी कभी इसको रिपीटेडली स्टडी करना चाहिए कि कुछ न कुछ चीजें हमारे जीवन में उतरे. तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज के तिरुभाव तिथि एक बार ब्रह्मचारी भक्ति सिद्धांत सरस्वती के कहते हम जाते हैं बाहर दान लेके आते हैं तब ये मंदिर चलता है. भक्ति सिद्धांत सरस्वती ओवर हर्ड दिस. वही ब्रह्मचारी को ऐसे लगता है कि वो आश्रम चला रहे हैं, भगवान चलाता है, ये समझ में नहीं आता. तो दूसरे दिन कहा भक्ति सिद्धांत ने कोई भी बाहर नहीं जाएगा आज, सब यहाँ बैठ के जप करो. तो जप करें तो कहाँ से सो जाएंगे, जप कहाँ करेंगे इतना सारा आज बैठ के. कोई एक महीना बाहर नहीं जाएगा और बाहर से लोग अपने आप सामान मंदिर में दे के जाए और आश्रम में पहले से ज्यादा सब चीजें हैं. और तब जाके सबको पता लगा कि हम नहीं चला रहे थे, ये तो भगवान गौरंग महाप्रभु की कृपा से राधा रानी सबका रसोई चला रही है. सिंपली वांटेड देम टू स्टॉप गोइंग देयर, डोंट थिंक दैट यू आर रनिंग द होल शो. एक बार किसी का बाप लड़के को ढूंढते हुए पुलिस को लेके आया और भक्ति सिद्धांत खटिया के ऊपर बैठे तो लड़के को खटिया के नीचे छुपा दिया, उसको नीचे छुपा दिया. उसने बोला जाओ ढूंढो, यहाँ नहीं है, जाओ ढूंढो डैम से चले गए. आई सेव्ड यू, मैं आपको बचा लिया. अच्छा मगर इतना कुछ करने की जरूरत पड़ती थी, यानी उनके जीवन में ऐसे कुछ अजीब अजीब उनकी लीला के पाठ है। कुछ लोगों को कुछ याद है उनकी लीला, कुछ शेयर करना चाहते हैं, कुछ विशेष उनके जीवन पे जीवन की। अच्छी बात, मैं कह रहा था कोई पुस्तक हो उसके ऊपर सेवेंथ, उसके ऊपर रे ऑफ विष्णु करके पूरा फुल पुस्तक लिखा पड़ा है, रे ऑफ विष्णु करके। कभी भक्ति विनोद ठाकुर प्रार्थना करते थे जगन्नाथ जी को कि ऐसा कोई आपके चमत्कारी जीव इस धरती पे आए के आपकी प्रचार करे। तब भक्ति विनोद ठाकुर की प्रार्थना थे जगन्नाथ की कृपा से, वृषभानु देवी दैताय, वृषभानु देवी मतलब राधा रानी दैताय, उसकी कृपा से इनका प्रकट्य हुआ, इनका प्रकट्य हुआ। और फिर भक्ति विकास महाराज ने तो तीन इतने बड़े वॉल्यूम में भक्ति सिद्धांत सरस्वती की जीवनी लिखी है पूरी, तो हमारे पास बहुत कुछ उनके जीवन से सीखने को है, उनकी शिक्षाओं को लेने को है। और आज प्रार्थना करनी चाहिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद को कि हमारे जीवन में थोड़ी सी तपस्या आए ताकि हमारी भक्ति पक्की हो, निष्ठा वाली हो और आगे बढ़े। तो कोई somebody want to share something about भक्ति सिद्धांत सरस्वती, some special past time, कोई किसी को ध्यान में हो।
He had a fall down and he had gone out of the ashram, then Bhakti Maharaj called him back. Everybody was criticizing him, but Bhakti Maharaj called him back. You know, go and touch him, somehow you bring him back to ashram. So that person has gone with a woman, you know, he had fallen down, but still he was so much, he called him back.
एग्जैक्टली ऐसे ही श्री प्रभुपाद, और प्रभुपाद जी कभी कहते थे, प्रभुपाद तो डिसाइड कहते थे, प्रभुपाद यू आर प्रभुपाद, से भी प्रभुपाद यू हैव योर प्रभुपाद, आई हैव माय प्रभुपाद। प्रभुपाद तो ऐसे कहते भाई आपका प्रभुपाद, मैं तो मेरा प्रभुपाद, मेरा भी आई हैव माय प्रभुपाद आल्सो। सो प्रभुपाद ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में जिस सन्यासी ने प्रचार किया इस कान का, किसी स्टेज पे उसने डंडा बाय पोस्ट प्रभुपाद जी को भेज दिया, कम आई कैन नॉट मेंटेन सन्यास। वो प्रभुपाद से मिलने आया वृंदावन में विद टीयर इन आईज, प्रभुपाद से बुचे मोर आश्रम यू स्टे, प्लीज नेवर लीव अस, कभी हमको छोड़ना नहीं, नेवर लीव अस। प्रीचिंग इज विथ कंपैशन, फालन तो हम पहले हैं जब इस मटेरियल वर्ल्ड में आए क्यों हैं, फालन तो है ही, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। योजना के अब कोई बचा रहा है हमको, somebody is saving us, then he has a compassion only, then he is saving us, and उसमें everybody commit some mistakes, but they really they have so much compassion that they ignore। ये कहां से सीखा, पूतना काय के लिए आई थी कृष्ण को, शी केम सिमरिंग कालकूट विष स्तन के ऊपर लगा के आई थी, मारने के लिए आई थी ना। कृष्ण ने क्या देखा पूतना में, विष को देखा के स्तन को देखा, विष को इग्नोर कर दिया, स्तन को पिया, बोला ये तो माँ की तरह आ गई, इसको माँ का स्थान दे देना। बुरे बुराई को नहीं देखा, अच्छाई को देखा, ये इससे बहुत बड़ा सीखने को मिलता है। कृष्ण नेवर सा दी फॉल्ट, ओनली ही सा दी गुड एस्पेक्ट ऑफ हर। और फिर भगवान श्री कृष्ण के फॉलोअर वो शिष्यों के अंदर बुराइयां नहीं ढूंढते हैं, अच्छाई को ढूंढते हैं, जस्ट लुक फॉर समथिंग गुड, और जो गुड मिल जाए एक तो उसको इतना फैन करो, इतना फैन करो। प्रभुपाद यूज्ड टू से एवरीबॉडी हैज समथिंग गुड एंड यू शुड बी लाइक ए हनी बी एंड फाइंड ए स्वीटनेस इन एवरीबॉडी, हर एक के अंदर अच्छे गुण हैं, एक गुण अच्छा मिल जाए उसको इतना फैन करो, इतना फैन करो कि उसके जो भी बैड थिंग्स है, अवगुण है, वो सब उसमें जल जाए। तो प्रभुपाद हिप्यू में क्या देखा, प्रभुपाद ने little desire for chanting and service. ताकि तो उन बुराइयां सभी उनके अंदर तो दिख रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने एक चीज को देखा एंड प्रभुपाद सिंपली फेंट दैट और वो साधु बन गए, वो उनका जीवन बदल गया। तो ये कंपैशन जब नहीं हो तो ये भक्ति सिद्धांत देवर वेरी कंपैशनेट पीपल। भक्ति सिद्धांत तो एक बार कहने लगे कि महाप्रभु ने बड़े बड़े मंत्रियों को रूप सनातन को साधु बना दिए और मैंने गटर में गिरे हुए लोगों को उठा के साधु बनाया। अब वो साधु बने हैं तो वो हर एक चीज को अपना बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ही वॉज कंपेयरिंग दैट महाप्रभु हैज गॉट द पीपल फ्रॉम वेरी हायर रैंक एंड ही मेड देम रिनाउंस। और मैं तो गली से पकड़ के लोगों को साधु बनाया और साधु बनने के बाद वो सब कहते हैं कि ये कमरा मेरा और ये कमरा मेरा। ही वॉज रियली नॉट सेटिस्फाइड एक स्टेज के ऊपर। बट और कोई somebody want to share something about Bhakti Siddhanta Saraswati? In Dhaka he was preaching on first verse of Bhagavatam for 2 months. Janamadi yesterday. डिबेट में स्कॉलर ऐसे थे, भक्ति विनोद ठाकुर वॉज टू सिक इन बेड रिडन और उस वक्त देयर वॉज अ बिग डिबेट वैष्णव और ब्राह्मण इसके ऊपर। सो भक्ति विनोद कहेंगे मैं जा नहीं सकता, हु विल डू दिस जॉब, वॉज क्राइंग दिस हाउ कैन। एंड देन भक्ति सिद्धांत आई विल डू दी जॉब। और वो जो गए वहां जो उन्होंने बोला, पहले तो ब्राह्मण को बहुत क्वालिटी बहुत ग्लोरीफाई किया और फिर वैष्णव को ग्लोरीफाई किया। एंड देन ही रियली कन्विंस एवरीबॉडी फ्रॉम शास्त्र दैट वैष्णव इज हायर। एंड भक्ति विनोद जब व्हेन ही हर्ड हिज विक्ट्री देयर ही वाज रियली इन टीयर्स एंड वेरी हैप्पी दैट ही हैज प्लीज्ड मी। मैं कुछ कर नहीं सकता था ऐसी स्थिति में, ही हैज डन दैट जॉब। सो स्कॉलर तो अपनी जगह पे होता है, स्कॉलर बड़ी ए पर्सन लाइक ए डिबेटिंग एंड 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 ही वाज लाइक वेरी क्या कहेंगे लाइन वो सिंह गुरु पर डिबेट में, जैसे किसी से डिबेट करनी है आर्ग्यूमेंट करनी है तो ही इज ऑल दी शास्त्र एंड कोट एंड लाइक दे वॉकिंग डिक्शनरी जैसे लिविंग हो। सो दैट पर्सन वॉज अभी भी उसकी इंग्लिश लिखी हुई हम तो नहीं पढ़ सकते, सो ब्रिटिश इंग्लिश परफेक्शन उनकी अपनी थी। सो वी आर फॉर्चुनेट दैट वी हैव सच ए लाइक ग्रेट ग्रैंड पेरेंट इन हिज स्पिरिचुअल लाइफ, सच ए वंडरफुल पीपल वी आर रूप सनातन गोस्वामी द मिनिस्टर एंड द ग्रेट डायरेक्ट डिसाइपल चैतन्य महाप्रभु। And then we have this whole line of great acharyas that we are children of this big family. We should be proud and simply be thankful to them because Prabhupada, he has brought us in this big family. Bhagavan Prabhupada, we should be really thankful that he has brought us in a big family. This came, the world known as the Lord Governor British they were talking to them from the lords to the common men, their preaching was has that much wide Bhakti Vinod and Bhakti Siddhant, from the lords to the common people they were preaching. Unki preaching very powerful. Kings, they were preaching to the kings, King of Tripura, he went there, the King of Tripura, Manipur, all these, they were preaching to the kings. So this is only we should be really proud and thankful to the Prabhupada that he has brought us into this wonderful acharya's parampara for our perfection in human life. Hare Krishna. So yesterday's verse was यही संस प्रसाद होगा दुखियों ने एवते आज अंतम को कौन कल टुमारो विल कंटिन्यू द नेक्स्ट वर्स इज शक्नोति यशोरुम प्राक शरीर विमोक्षना काम क्रोध उद्भवम वेगम संयुक्त यश सुखी नर. दिस इज कॉल्ड द फार्मूला ऑफ बिकमिंग हैप्पी. सुखी होने का साधन. इसमें सुख इंद्रियों का मत लो तो सुखी कैसे हो. सो देन दैट वर्स वील डू टुमारो. अब भक्ति सिद्धांत सरस्वती का आरती होगा, गुरु पूजा, पुष्पांजलि. थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्ण.